तो हम कह रहे थे कि अर्जुन वापिस आ रहे थे सभी महिषियों को लेकर, लेकिन वो हार जाते कुछ ग्वाल बालों को। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज उनके दुख का कारण को पूछते हैं, और अर्जुन उसको बताकर फिर क्या करने लगे, वो जो भगवान के प्रति जो विरह का जो दुख है उसको कम करने के लिए अर्जुन भगवद गीता को स्मरण करने लगे। वहाँ पर वर्णन आता है कि जो शिक्षाएं भगवान ने उनको दिया युद्ध स्थल पर, ऐसे बहुत ही विकट परिस्थिति में जो शिक्षाएं दिया गया था अर्जुन को, तो उनको स्मरण करने लगे। अभी भी वैसे ही स्थिति था, फिर से अर्जुन फिर से उनको स्मरण करने लगे। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों को कोई भी विकट स्थिति हो, क्रिटिकल समय, उस समय हमें भगवद गीता का स्मरण करना पड़ेगा। भगवद गीता भगवान के जो शिक्षाएं हैं उनको स्मरण करना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा विकट परिस्थिति कौन सा है पता है? हाँ, मृत्यु, हाँ, या देह छोड़ने से पहले वो बहुत ही क्रिटिकल आर ऑफ डेथ, उस समय हमें भगवद गीता को स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है। और उस दिन हम कह रहे थे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, हम लोग भगवद गीता यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। अलग अलग जगह पर भगवद गीता में उन्होंने इसको व्यक्त किया है। कोई बोलेंगे कहाँ पर व्यक्त किया भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भगवद गीता चर्चा करते हैं, तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत शमामित्यम तुष्यंती च रमंती च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि विद्योगं तं येन मां भजन्ते। सो आप जानते हैं ना इसको, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, भक्त लोग हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। तो मद्गत प्राणा, वो अपने जीवन को मुझे समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे में वो मेरे बारे में चिंतन चर्चा करते हैं, या कृष्ण कथा का चर्चा करते हैं। कृष्ण कथा मतलब भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, ऐसे हर रोज नित्यम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, वो दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं ऐसे भगवान कहते हैं। तो अभी हम लोग पहला अध्याय को आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये अध्याय ज्यादा से ज्यादा ये क्या है, एक आमुख है, प्रस्तावना है, पूरा भगवद गीता के लिए भूमिका है भगवद गीता के लिए। तो इसमें आरंभ होता है ये अध्याय धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछने से धृतराष्ट्र उवाच, हम लोग देखते हैं। और संजय उसके उत्तर में वो समझाते हैं कि कैसे, क्योंकि संजय को ये वो उनके गुरु व्यासदेव की कृपा से वो सब कुछ देख सकते थे। वो रूम में बैठ के वो देख सकते थे कि क्या चल रहा है युद्ध स्थल पर। तो उन्होंने वर्णन किया ये अंधा राजा धृतराष्ट्र को वर्णन किया उन्होंने क्या हो रहा था युद्ध स्थल पर। तो विशेष करके इस अध्याय में वो वर्णन करते हैं कि कैसे दुर्योधन के राजनैतिज्ञ प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, हम लोग उसको विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे दुर्योधन दोनों सेनाओं के जो शक्ति का मापदंड करते हैं और कैसे युद्ध आरंभ होता है अलग अलग शंखों का नादों से और और अन्य जो वाद्य है वो बजाने से, तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं टैक्टुली संजय टैक्टुली टोल्ड धृतराष्ट्र, वो बहुत ही मतलब टैक्टुली मतलब क्या बोलते हैं, संजय चतुरता से उन्होंने बताया कि कैसे धृतराष्ट्र आपको चतुराई से उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र आपके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई इस युद्ध में जीत के लिए कोई अवसर नहीं है या संभावना नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। तो इन सभी ध्वनियों को सुनकर वो लोग बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अर्जुन भगवान कृष्ण, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हमारे भूमिका में कि अर्जुन कैसे या अर्जुन को भगवान कृष्ण ब्रह्म में डाल देते, तो हमारे ऊपर कृपा करके अर्जुन को ब्रह्म में डाल देते हैं ताकि अर्जुन भगवान को अलग अलग हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछे और हम सब लोगों के लिए भी ये लाभदायक हो, तो ऐसे ब्रह्म में डाल देते हैं। फिर ब्रह्म में जाने के बाद अर्जुन बहुत ही अपने सगे संबंधियों के प्रति जो स्नेह है, जो पारिवारिक स्नेह या भौतिक स्नेह है, उनके उनके हृदय में बहुत ही उभर आ जाता है, तो उसके कारण वो उनके प्रति बहुत ही दया दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दया दिखाना शुरू करने के बाद वो अलग अलग वाद विवाद वाद करते हैं कि मुझे क्यों इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चार विभाग किया है इस अध्याय में, तो ऐसे विभाग करने का क्या महत्व है और कैसे कर सकते हैं उसको। इसका महत्व है कि हम लोगों को उस अध्याय में इससे पहले इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम सब लोगों को ये पूरा भगवद गीता के जो 18 अध्याय है उसका शीर्षक है हमें जानना चाहिए। हम लोग कितने लोगों को पता है उसका शीर्षक, 18 अध्याय के पूरा शीर्षक कौन बताएंगे? और हिंदी में भी जानना अच्छा है और संस्कृत में भी जान लेंगे तो बहुत अच्छा है। क्यों जानना जरूरी है उसका शीर्षक? हम लोगों को पता चलेगा कि उस अध्याय में क्या है करके। जैसे प्रभुपाद दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या देते हैं? गीता का सार बोलते हैं। क्यों उन्होंने ये अध्याय का शीर्षक गीता का सार दिया है उन्होंने? हाँ, तो जो भी भगवान आगे बोलेंगे वो पहले संक्षेप में उन्होंने इसमें बता दिया। तो ये अच्छा वक्ता का एक लक्षण होता है कि वो जो भी बोलना चाहते हैं वो पहले संक्षेप में बोल देते हैं, फिर उसको विस्तारित करके वो बोलते हैं और अंत में फिर से उसको निष्कर्ष रूप में, सार रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। 18 अध्याय भी वैसे ही है। तो आप भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक की तात्पर्य को लिए, तात्पर्य था वो दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है ना वो। तो वहां क्या है, तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या लिख रहे थे कि मिल गया, सबको मिल गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे बताया है कि यह दूसरा अध्याय भगवद गीता का संपूर्ण ग्रंथ का, भगवद गीता के जो संपूर्ण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, समरी। इसमें सब कुछ सारांश दिया गया है, इसलिए प्रभुपाद इसके शीर्षक क्या देते हैं, गीता सार। आचार्य लोग ऐसे कुछ मन में आ जाता है ऐसे कुछ नहीं लिखते, वो मन में आ गया लिख गए, लिख दिया उन्होंने। तो वो सब कुछ बहुत ही वो गहरा रहता है, शास्त्र के आधार पर रहता है, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर रहता है। उनके साक्षात्कार भी होना चाहिए, लेकिन साक्षात्कार भी क्या होना चाहिए, गुरु और साधु शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु और साधु शास्त्र को छोड़कर, परंपरा को छोड़कर हम लोग नया कुछ बताएंगे, नया कुछ बोलेंगे या लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसलिए हमें ये शीर्षक भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। कौन बताएंगे सभी 18 अध्याय के जो शीर्षक हैं? हाँ
कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, दूसरा गीता का सार, तीसरा कर्मयोग, चौथा दिव्य ज्ञान, पांचवा कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, छठवा ध्यान योग, सातवा भगवत ज्ञान, आठवा भगवत प्राप्ति, नवा परम ज्योति ज्ञान, दसवा श्री भगवान का ऐश्वर्य।
ऐश्वर्य या विभूति योग, ऐसे कुछ ऐश्वर्य संस्कृत विभूति योग, ठीक है। ऐश्वर्य
बारवा भक्ति योग,
11वां
11वां विराट रूप, 12वां भक्ति योग, 13वां प्रकृति पुरुष और चेतना, 14वां प्रकृति के 3 गुण, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवी तथा आसुरी स्वभाव, 17वां श्रद्धा के 3 विभाग, 18वां
या श्रद्धा के
उपसंहार,
विभाग।
18वां उपसंहार संन्यास की पूर्णता।
सिद्धि, गुड। और कोई बताएंगे, अभी सुन लिया। यू वांट टू से युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, गीता सार ना, या गीता का सार। ओके, श्री भगवान के, श्री भगवान का ऐश्वर्य।
अध्याय 12 भक्ति योग, अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना,
ओके तो ऐसे सभी को याद रहना चाहिए 18 अध्याय के जो शीर्षक है, ताकि हम लोग समझ ले कि क्या है उसमें। फिर हर एक अध्याय में भी ऐसे हम लोग विभाग बना सकते हैं, विभाग कर सकते हैं। इसका महत्व भी है, जैसे हम बता रहे थे, शीर्षक जानने से क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है कहाँ उस अध्याय में क्या है। वैसे ही उस अध्याय के अलग अलग विभाग बनाएंगे तो हम लोगों को पता चल गया चले जाए कि अलग अलग जगह पर क्या है, क्या वर्णन किया गया है। और आपको कोई ऐसे कुछ प्रश्न पूछा तो वहाँ से आप उल्लेख करके उनको उत्तर भी बता सकते हैं। तो इसलिए ये करना चाहिए। और कैसे किया जाता है ये, तो दो चीज याद रखना चाहिए जब करते हो। इसको करना आसान है, आप आधा घंटा में कर सकते हैं उसको। अनुवाद पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पढ़ते समय दो चीज याद रखना चाहिए, एक है कि कहाँ पर जो वार्तालाप बदल रहा है, आप जानते हैं ना, अभी अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन भगवान उसका उत्तर देते हैं, फिर से अर्जुन बोलना शुरू करेंगे या पूछना शुरू करेंगे, उसका अर्थ है वहाँ पर वार्तालाप बदल रहा है, तो वो एक ऐसा सेक्शन हो सकता है। और वो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उसको फिलोसॉफिकल फ्लो बोलते हैं, जैसे ऐसे दार्शनिक बस चीज़ों के बारे में भगवान वर्णन करते करते जाते हैं, कुछ और विषय को और भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसे दो चीज़ों को याद रख के हमें ये बनाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, यहाँ पर हम लोग पानी का जो पाइप रहता है तो ये एक जगह पर आके वो मोड़ देता है ना, वो तो वैसे ही ये जो वार्तालाप बदलते हैं या दार्शनिक विषय है वो बदलते हैं, तो उसको हम लेकर हमें ऐसे विभाग बनाना चाहिए। फिर उसका शीर्षक आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी यही शीर्षक होना चाहिए। वैसे तो ये शीर्षक थोड़ा ज़्यादा लंबे ही है, छोटे भी हो सकते हैं, तो आप अपना ही शीर्षक भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत ही प्रिसाइज है, इट्स वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे तो हमें तो अच्छा रहेगा। और पहला क्या है, पहला धृतराष्ट्र इंक्वायरी, आई डिडंट मेंशन दैट। Dhritarashtra's inquiry and measure of कुछ छोड़ दिया लगता है ना, या मैंने बाद में लिखा उसको। Dhritarashtra's inquiry ओके Dhritarashtra के पूछताछ क्या बोलते हैं, या धृतराष्ट्र के जिज्ञासा और दुर्योधन द्वारा तुलनात्मक सैन्य बल निरीक्षण, या निरीक्षण से अच्छा है मेजर मीन्स मापदंड, या विश्लेषण भी कर सकते हैं। निरीक्षण से अच्छा है विश्लेषण, वो सिर्फ देख नहीं रहे, वो चर्चा कर रहे उसके बारे में। तो पहले श्लोक में उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, संजय हुआ धृतराष्ट्र हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामक पांडवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। तो समवेता युयुत्सव मामक पांडवश्चैव किम् अकुर्। ऐसे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके उत्तर में धृतरा संजय क्या कहते हैं, जो दुर्योधन है, राजा दुर्योधन, राजा करके उनको संबोधित करते हैं, राजा दुर्योधन ने क्या किया, तो दृष्ट पांडवानिकम, पांडव पक्ष के जो व्यूह रचना को देखकर वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए, आचार्य द्रोण के पास गए, ऐसे वो कहते हैं। फिर वहाँ पर धृतराष्ट्र का या दुर्योधन गीता आरंभ हो जाता है वहाँ पर, इसकी गीता दुर्योधन पश्यताम पांडवपुत्राणाम आचार्य महितिं चमं यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहते हैं कि हे आचार्य आप देखिए, मतलब दुर्योधन उनके गलती को ढूंढ रहा था, समझा रहा था और उन्होंने क्या गलती किया, क्योंकि दृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति थे उन्होंने उसको व्यूह रचना किया था। तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि देखो आपके शिष्य ने क्या किया है, तो ऐसे कह रहा है। तो और उसके बाद वो वर्णन करता है पांडवों के, जो तीन श्लोकों में पांडवों के जो महान योद्धा है, प्रमुख योद्धा, उनके वो वर्णन करते हैं। तो योद्धा का वर्णन करते हैं सिर्फ प्रॉपरली, उनको वो तुलना भीम और अर्जुन से करते हैं। तो अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुन समायदि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पहले इस श्लोक में तीन योद्धाओं का नाम लेते हैं वो, जो भीम और अर्जुन के समान है युद्ध में और महारथ है। सो युयुधान विराट एंड और द्रुपद। तो उसके बाद दृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज विराट, सो ये लोग भी बहुत ही महारथ है। युधामन्यश्च विक्रांतो उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। सो युधामन्यु उत्तमौज, तो युधामन्यश्च विक्रांतो उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र भी थे, ये सब लोग महारथ थे। तो और फिर उसके बाद में दुर्योधन अभी सिर्फ पांडवों के युद्धाओं को वर्णन करेंगे तो मेरे सभी युद्धाएँ निरुत्साही हो जाएंगे, फिर ऐसे वो अपने युद्धाओं के बारे में चर्चा करने लगे। तो व्हाट इज दैट, हाउ इट बिगिंस, अस्माकं तु विशिष्टाय थान निबोधद्विजोत्तम नायक मम सन्निश्च संज्ञातं थान ब्रवीमिते। वो कहते हैं मैं आपको अभी मेरे ओर के जो योद्धाएं हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। फिर द्रोण को बोलते हैं आप है भगवान, भगवान मतलब आप है, तो भीष्म है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जय, कर्ण और कृपा हमेशा युद्ध में विजयी हुए, अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्ति स्तुतैव च, अश्वत्थाम विकर्ण सौमदत्ति ये सब लोग हैं। सो और भी कई सारे है बोलते जो मेरे लिए प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार है बोलते। अन्ये च भावशूर मदर्थे त्यक्त जी नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशार। वो सभी सभी अलग अलग प्रकार के शास्त्रों से युक्त है और युद्ध कला में बहुत ही निपुण है, ऐसे वो कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारे सेना क्या है, अपर्याप्तम तथा अस्माकम, फिर भी पर्याप्त नहीं है या असीमित है, बोलता है, दोनों अर्थ होता है इसका। तो हमारे सेना भीष्म के द्वारा रक्षित होने के बारे कारण असीमित है, लेकिन जो पांडवों का जो सेना है वो क्या है, सीमित है भीम के द्वारा रक्षित होने के कारण। तो ऐसे तो भेदभाव करना, भेद करना, यही पॉलिटिक्स राजनीति का आधार है। हमारा उनका, हमारा उनका, हमारा उनका, हाँ ऐसे भेद करना ही स्वपर स्वपर भेद करना ही क्या है, एक राजनीतिज्ञ और डिप्लोमेसी कहते हैं, तो राजनीति का आधार है। तो पार्टी पॉलिटिक्स कहते हैं ना उसको, पार्टी पॉलिटिक्स। तो और वो कहते हैं कि फिर भी क्योंकि भीष्मदेव बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप सब लोग अपने अपने स्थिति में रहकर भीष्मदेव को रक्षा करना चाहिए, ऐसे कहते अयमे चुस सर्वेश यथाभागम अवस्थित भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्वैव हि, ऐसे कहते। ये पहला विभाग है, अगला विभाग हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, हम लोग पूरा कर देंगे उसको। तो फिर उसके बाद में वहां पर भीष्मदेव भी वो सुन रहे थे वो ये सब चीज, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो भीष्मदेव ने समझा कि उसके पुत्र, उनके प्रपौत्र, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडसन ना, सो पोता पोता हाउ इज ही, प्रपुत्र ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन दुर्योधन प्रपोता थे या पोता थे, ग्रैंड फादर भीष्म, ही वॉज सन ऑफ गंगा शांतनु महाराज, ओके देयर सन्स ऑफ या ग्रेट ग्रैंड प्रपौत्र, प्रपौत्र थे ना वो लोग। तो उन्होंने उनको, भीष्मदेव को समझ में आ गया कि ये बहुत डर रहा है, बहुत ही चिंतित है स्थिति को देखकर, इसलिए वो तुरंत ही उनको थोड़ा हर्षित करने के लिए सिंहनादम विनोदश्य शंकम दद्मो प्रतापवान, एक सिंह की तरह गर्जन कराया अपने शंख को, थोड़ा उनको उत्साह देने के लिए, थोड़ा चिंता से मुक्त करने के लिए। फिर उसके बाद में कई सारे वाद्य तथा शंकश्य देर्यश्य पनमानक गोमुख सहसैवाभ्य हण्यंत सशब्दस्थ मुलोगवात, तो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य है वो भी बजाए गए और उसका जो ध्वनि था वो बहुत ही ज्यादा था, तुमलो भवा। सो फिर उसके बाद में इस ओर पांडवों के ओर भी तथा शंकर तथा श्वेतर हैर युक्त महति चंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंको प्रदद्मतु। तो वो पांडव और पांडव के ओर जो भगवान कृष्ण, ऐसे ये चतुराई से बता रहे, सीधा नहीं बोल रहे वो कि आपको युद्ध में क्या होगा, जीत नहीं होगा, ऐसा सीधा नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली चतुराई से अप्रत्यक्ष रूप से उनको कह रहे तथा श्वेत रहते महति चंदने, महति मीन्स बहुत ही दिव्य या महान, जो रथ के ऊपर स्थित माधव और पांडव उन्होंने भी अपने दिव्य शंख को बजाया। कई सारे ऐसे यहाँ पर आरंभ से ही कई सारे हम लोग युद्ध में पांडवों के जीत के लक्षण जो है हम लोग सुनते हैं, आचार्यों ने उसको, प्रभुपाद जी ने उसको वर्णन किया है। तो फिर वो दिव्य शंख को नाद किया, और शंखों का भी नाम बताते हैं संजय, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम ज्ञानपौंडम दद्म महाशंखम भीमकर्मा मृकोदरः। तो भगवान पांचजन्य को बजाए और अर्जुन देवदत्त को बजाए, और भीम, क्या बताया उन्होंने, पौंड्रम नामक शंख को बजाया। और जो नाम लेते हैं संजय, वो उसका भी बहुत महत्व होता है। वो भी क्या इंगित कर रहे हैं कि आपको जीत नहीं हासिल होगा, आपके पुत्रों को जीत नहीं हासिल होगा, क्योंकि माधव ऋषिकेश है, माधव है, ऋषिकेश है, और धनंजय, जिन्होंने सब जगह जाकर बहुत सारे धन को जीत लिया था उन्होंने राजस्व सेक्रीफाइस करने के लिए। और भीम तो क्या है, वो वृकोदर है, उनके रुदर वृक बहुत ही ज्यादा खाते हैं और बहुत ही बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, ऐसे संजय चतुरा ऐसे बता रहे। उसके बाद में भी अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुला सहदेव सुघोषो मणि पुष्पको, उनके सभी पांडवों के जो क्या थे, शंख थे, उनके नाम लेते हैं। तो लेकिन कौरवों के वो रो नाम ले नहीं लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, और राजा बोल रहे हो उनको, याद दे रहे कि वो राजा है। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषो मणि पुष्पकौ काशस्य परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य छात्यकी चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंकान दद्मु पृथक् पृथक्। ऐसे अलग अलग प्रकार के शंखों को उन्होंने, ये सभी लोगों ने, योद्धाओं ने तो बजाया। तो यहाँ पर कई सारे पांडवों के ओर से कई सारे शंखों का नाम ले रहे हैं और योद्धाओं का भी नाम ले रहे हैं। वैसे वो कौरवों के बारे में नहीं बताया उन्होंने, वर्णन किया, तो जोर दे रहे हैं कि हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे। तो ये सब शंख के ध्वनि को देख सुनकर क्या हो गया, ये शंख का ध्वनि विशेष करके जब पांडवों ने बजाया, कौरवों ने भी जब बजाया थुमलो भवत, वो बहुत ही ज्यादा था वो भी, लेकिन ये जो शंख, इनका जो नाद था, शंख का नाद या शंख का ध्वनि था, वो आकाश, पृथ्वी से लेकर आकाश तक पहुंच गया। सो नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽव्याननादयन् हृदयानि विदारयत् धार्तराष्ट्रस्य, सो वो हृदयानि विदारयत्, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत्। हृदय को, हृदय में कंपन आने लगा, ऐसे होता है ना, हृदय में कंपन आता है ना, पूरी तरह से हम लोग भयभीत हो जाते हैं तो पूरा हिल जाता है ना, ऐसे हो गए उनको। फिर उसके बाद में चौथा, तीसरा हमारा विभाग है, जिसमें अभी शंखों का ध्वनि हो गया, उच्चारण हो गया है, अलग अलग वाद्य बजाए गए हैं, उसका अर्थ है कि युद्ध शुरू होगा, आरंभ होगा, आरंभ हो गया है अभी। और अर्जुन भी, बीसवें श्लोक में हम लोग देखेंगे तो अर्जुन भी वो शस्त्र को प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, तो शस्त्र को लेकर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा के बाण भी रख दिया उन्होंने, तो सिर्फ छोड़ना बाकी था वो। फिर क्या करते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, फिर ऋषिकेश को बोलने लगे, क्यों बोलने का जरूरत है अभी, अभी अभी वो बाण है, वो छोड़ने, तीर है, वो छोड़ने का है जरूरत है, वो छोड़कर अभी कुछ बात करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कैसे अर्जुन को भ्रम में डाला गया। तो फिर वो अर्जुन बताता है, मैं देखना चाहता हूँ किनके साथ युद्ध करना है, कौन कौन यहाँ आए हैं, यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा है से, कौन कौन ये धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, ये दुर्बुद्धि वाले जो दुर्योधन है उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से योद्धा आया है। तो पूरा पूरा पृथ्वी भर से सभी योद्धा वहां पर आए थे। क्षत्रिय राजा थे, सभी वहाँ पर आए थे। तो फिर विशेष करके यहाँ पर अर्जुन को, अर्जुन क्या करते हैं, कृष्ण को अच्युत करके संबोधित करते हैं। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाल वर्णन करते हैं, अच्युत मतलब जो भगवान, जो कवि अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाने में, कवि व्हाट इज दैट, ही डज नॉट, ही डजंट फेल, छूटते नहीं है, उनको अच्युत कहते हैं। तो ऐसे फिर दोनों सेनाओं के बीच में रथ लिए के जाया जाता है। विशेष करके भगवान कृष्ण द्रोण भीष्म के सामने लेकर जाते हैं, उनको पता रहता है कि ये क्या है। तो बहुत ही स्नेह है इनके प्रति, इसलिए वो ये सब व्यवस्था किया उन्होंने उनको भ्रम में डालने के लिए। तो फिर बोले, देखो आपके मूत्र ये सभी क्या है, मित्र पौत्र सब लोग है वास्तविक वही है हम भौतिक आसक्ति मलमूत्र से आसक्त रहते हैं, है ना। ये शरीर क्या है, मलमूत्र से भरा हुआ एक बैग है, ये थैली है, उससे ही हम लोग आसक्त रहते हैं। सगे संबंधी क्या है, अलग अलग मलमूत्र के एक थैली है वो। तो अर्जुन भी इससे क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो ऐसे प्रभावित हो गए, फिर बहुत ही वो कृपया धराया विष्ट, बहुत ही वो दया उनके हृदय में उभर आ गया। तो कृपया परया विष्ट, उसका अर्थ है कि प्रभुपाद वहां पर वर्णन करते हैं कि वैसे पहले से ही अपने सेना में जो भी लोग थे उनके प्रति तो उनके ऊपर दया था, अभी अर्जुन दूसरे पक्ष के जो सेना थे उसके ऊपर भी दया दिखाने लगे, इसलिए वो कृपया परया विशेष कृपा उनका, ऐसे वो बोलते। तो फिर बात करने लगे, उनके शरीर में अलग अलग क्या है लक्षण भी दिखाई देने लगे, वो इतना भय भयभीत हो गए और भौतिक स्नेह के प्रभाव में इतना आ गए कि उनके शरीर में कंपन होने लगा, त्वचा जलने लगा और वो रोने भी लगे बोलते। पहले अध्याय में रौनक के बारे में नहीं वर्णन हुआ है, लेकिन बाद में दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में रोने के बारे में भी वर्णन हुआ है, अश्रु पूर्ण कुलक्षण। लेकिन प्रॉपर वहाँ पर यहीं पर उसको बोल देते, हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि वो रो रहे थे करके। ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे महान योद्धा रो रहे हो, ऐसे कभी होता है, वो रोते नहीं, हमेशा क्रोध दिखाते हैं। तो उनके अंदर वैसे इतना रजोगुण रहता है कि रोने वोने का कुछ चक्कर ही नहीं आता है उनके उनके। तो ऐसे उनको प्रशिक्षण भी दी जाता है क्षत्रियों को। तो ऐसे रोने लगे और गांडीव भी उनके हाथ से सरक रहा था। तो फिर वो भगवान के प्रति, तो भगवान के को वो वाद विवाद करने लगे, बात करने लगे कि क्यों इस युद्ध में वो नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसे वो बात करते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं। तो वो पहला कारण था कि वो बहुत ही दया से आवृत हो गए, और दूसरा कारण था कि उनको ये सभी राज्य भोग सुख वगैरह जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा नहीं था, वो विरक्त होना चाहते थे, वो दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है, तो तीसरा कारण क्या था, वो उन्होंने बताया कि मैं राज्य और ये सभी सुख भोग को प्राप्त किया तभी मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिनके साथ ये सभी आदान प्रदान करना है वही लोग मर जाएंगे। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि कुल का नाश करने से जो पाप है तो उससे वो भयभीत हो गए। वो तो ऐसे चार कारण वो बताते हैं। और कुल का नाश होने से भी और क्या क्या होता है उसका भी नतीजा वो वर्णन करते हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या है, पाप 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 से भयभीत है वो। पतंती पितरो हेषाम, ये कुल वाले, कुल परिवार वाले भी पतन होंगे, और जो ऐसे कुल धर्म को कुल जो नाश करते हैं वो भी उनका भी नरक का गति होगा, शाश्वत काल तक नरक में उनको रहना पड़ेगा, ऐसे वो कहते हैं। तो अंत में क्या कर देते हैं, अपने गांडीव और बाण को, जो तीर को रखकर बैठ जाते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे ये अध्याय अंत होता है। इसमें कितने सारे श्लोक है, 46 श्लोक है ना, ये सभी मिलाकर 46 श्लोक हो जाते हैं ना। तो 46 श्लोक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे हर एक श्लोक के ऊपर। पहले साथ में ये श्लोक को पढ़ेंगे, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षे, साथ में हम लोग करेंगे साथ में। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवे आयुस्सवः मामका पांडवा शैवा किमकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, वो ये नाम नहीं बोलो, सिर्फ श्लोक साथ में बोले, इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र हुआ, अच्छा, धृतराष्ट्र शब्द का क्या होता है, जो राष्ट्र को पकड़ के रखते हैं उनको धृतराष्ट्र कहते हैं। ये अच्छा नाम है क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय उनको पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, ऐसे जो चोर लुटेरे लोग वो लोग आके उसको हड़प लेंगे। आजकल कलयुग में ऐसा है ना स्थिति, सब जो नीते हैं वैसे ही है, तो क्षत्रिय के लिए। लेकिन जैसे जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने राष्ट्र को पकड़ा वो ठीक नहीं था। तो हम जानते हैं धृतराष्ट्र के बारे में कि वास्तव में धृतराष्ट्र को राज्य जाना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ा पहला पुत्र था। तो वैदिक सभ्यता में ऐसे होता था, जो पहले पुत्र को राज्य या सभी सभी संपत्ति दिया जाता था। तो और वो क्योंकि सभी सभी को धर्म में प्रशिक्षण दिया जाता था, वो सभी लोग जो जिनके ऊपर उनके ऊपर निर्भर रहते थे, उनके भाई हो या कोई भी, उनके भाई के बच्चे हो, पत्नी हो, कोई भी हो, परिवार वालों को, माता पिता को, सबको वो देखभाल करते थे। तो क्योंकि उनको धर्म में प्रशिक्षण था, क्या क्या धर्म है, अलग अलग लोगों के, अपने परिवार वालों के प्रति क्या जिम्मेदारी है या समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में सभी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो और सभी अन्य परिवार वाले भी उनको सहायता करते थे, ऐसे परिवार अच्छी तरह से चलते थे, समाज अच्छी तरह से चलता था। तो हमारे एक पूतना प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया एक ऐसा नियम बना दिया, लैंड 1974 में, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 या 74 में, 72 और 74 में, ऐसे 1974 में या 72 में उन्होंने ऐसा नियम बनाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। उसने क्या किया, सभी बच्चा बच्चियों को समान क्या है, संपत्ति मिलेगा, उसको विभाजन होगा संपत्ति का और सबको मिलेगा। तो ऐसे नियम बने, उसके कारण क्या हो गए, सभी भाई भाइयों के बीच में झगड़ा आरंभ हो गए। भाई भाइयों के बीच में भगवद गीता से आरंभ नहीं हुआ झगड़ा, सो झगड़ा इससे आरंभ हुआ। कभी 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 लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग भगवद गीता के बारे में बहुत सारे गलत धारणाएं हैं कि भगवद गीता हम लोग घर में लेकर आएंगे या पढ़ेंगे तो भाई भाई उनके बीच में झगड़ा शुरू में, वो भगवान कृष्ण या अर्जुन के कारण नहीं है, ये पूतना के कारण है ये। और आजकल कोर्ट में सबसे ज्यादा जो समस्या है ऐसे प्रॉपर्टी मैटर्स, इतने सारे इसके इतने सारा वायलेंस होता है, बहुत सारे हिंसा होता है इसके, लोग एक दूसरे को मारते हैं, हाँ, और कोर्ट में जाते हैं लोग इसके कारण, और आजीवन इतना सारा चिंताएं, आजीवन इसके बारे में लड़ते रहते हैं कभी कभी, और उसे क्या हो जाता है, बहुत सारे अन्य इसका प्रभाव खेती के ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा इसके कारण, क्योंकि परिवार के जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जब साथ में रहते हैं अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करेंगे, जो आजकल लेबर समस्या होता है उसके लिए अन्य कारण भी है, लेकिन ये भी एक कारण है। तो आजकल इंडस्ट्री के कारण सभी लोगों को, गांव के लोगों को डाल के यू नो जो कारखाने में डाल रहे हो लोग, वो सब कारण है, लेकिन तो खेती के ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो फिर आजकल स्त्रियों को भी समान अधिकार करके स्त्रियों को भी संपत्ति में वो कितना है, देखो पहले दहेज देना पड़ेगा उनका, आजकल पढ़ाई भी कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए कितना सारे खर्चे करना पड़ेगा, फिर दहेज देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में संपत्ति में आधा, इट इज कम्प्लीटली इनजस्टिस दिस। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि समाज का स्थिति ठीक नहीं है इसके कारण। तो ये मनुष्य संहिता में ये सभी वर्णन किया गया, कैसे संपत्ति का ले क्या क्या नियम है ये सब वर्णन आता है, इसको लॉ ऑफ प्राइमोजिनेचर अंग्रेजी में कहा जाता है, जो जो पहला जो है ना पुत्र होता है उनको संतान नहीं पुत्र पुत्र, क्योंकि संतान बोले तो स्त्री को भी, वो इंग्लैंड में ऐसा नियम है, वो पहला संतान पुत्री है तो भी उनको राज्य चला जाता है, वो रानी बन जाते हैं, ऐसे कई सारे रानियां हुए, विक्टोरिया एलिजाबेथ एलिजाबेथ 1 2 3 4 विक्टोरिया 1 2 3 4 ऐसे कई सारे हुए हैं इंग्लैंड के इतिहास में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, नियम नहीं था। वैदिक संस्कृति में क्या नियम था, पुत्र को जाएगा तो वो देखभाल, ये पुत्री क्या करेगी क्या करेगी है ना, वो क्या देखभाल करेगी, तो वो होता नहीं, उनको ही देखभाल करने वाला कोई चाहिए हमेशा, जब वो बच्ची रहते हैं वो पिताजी को देखभाल करना पड़ता है, जब वो युवा हो जाते हैं तो पति को देखभाल करना पड़ता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो बड़ा पुत्र होता है उनको देखभाल करना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोला करते थे एक 16 साल के लड़का है वो पूरा दुनिया में भ्रमण कर सकता है, लेकिन 16 साल के लड़की जो है वो भ्रमण नहीं कर सकती, आजकल वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नतीजा ठीक नहीं है, है ना। तो वो पहले पुत्र को ऐसे होना चाहिए, ये नियम है। तो फिर धृतराष्ट्र को जाना चाहिए था ये, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि सिर्फ जन्म को ही नहीं देखा जाता, जन्म है ठीक है, जन्म वो असली प्रक्रिया नहीं है या वो एग्जैक्ट नियम नहीं है, वास्तव में गुण 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और धार्मिक नियमों में भी वो अंधा था, प्रभुपाद आगे किताब पर में लिखने वाले हैं। तो इसलिए वो कैसे प्रजा को रक्षा करेगा, कैसे प्रजा को वो मार्गदर्शन एक अच्छे मार्ग में लेकर जाएंगे वो धर्म के पथ पर। इसलिए दूसरे जो पुत्र थे पांडु को राजा बनाया गया, आप जानते हैं इतिहास महाभारत में कि कैसे पांडु का भी मृत्यु हो जाता है। तो फिर उस समय पर पांडव जो बहुत छोटे बालक थे वो लोग, तो फिर ये धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। वैसे भीष्म थे वो वहाँ पर, वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा और जो भी इस उनको मैं सहायता करूंगा ऐसे। तो फिर ऐसे मतलब व्यवस्था की गई कि युधिष्ठिर महाराज बड़े होने तक क्या करेंगे, धृतराष्ट्र उसको थोड़ा देखभाल करेंगे, एक ऐसा अस्थाई व्यवस्था की गई, टेम्पररी अरेंजमेंट। तो लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया, उसने सोचा मुझे प्राप्त नहीं हुआ राजा, फिर मेरे पुत्र को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए? तो विशेष करके उसको दुर्योधन के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्ति थी, अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा आसक्ति थी। तो ये आसक्ति अच्छा नहीं है। तो पहले उसको बोला गया था, जब इनका जन्म हुआ ही, दुर्योधन और उनके जो भाई थे, उनका जन्म होते ही उनको बताया गया कि दुर्योधन क्या है, एक सांप है, एक विषीली सांप है। तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे, विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को, अभी मार दो इसको। जनरली वैदिक संस्कृति में क्या होता है, बच्चों को रक्षा दी जाती है, लेकिन एक ऐसा बच्चा था, ये पूरा परिवार को, कुल को ही नष्ट कर देगा ये, इसलिए इसको अच्छा है अभी भी मार दो। तो लेकिन धृतराष्ट्र इतना आसक्त था, उनको बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि विदुर ने हमेशा उनको शिक्षा दी। और अक्रूर भी आए थे ना, भगवान कृष्ण उनको भेजे थे, अक्रूर ने भी उनको शिक्षा दिया, स्वयं भगवान कृष्ण ने शिक्षा दिया, वेद व्यास ने शिक्षा दिया, कई सारे लोगों ने उनको हमेशा सुझाव दिया, फिर भी उसको उससे आसक्ति, वो स्वीकार करता था, ये ठीक है सब आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करूँ, मैं आसक्त हूँ ऐसे। सो अंधा हो गया था पूरा, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा हो गया था। ऐसे उन्होंने वो राष्ट्र को पकड़ के रखा उन्होंने। और देखते हैं हम लोग, दुर्योधन और सभी उनके भाई कौरव लोग, सभी उनका नाश भी हो गया युद्ध में, फिर भी और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, फिर भी वो घर को त्याग के छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इतना आसक्त था घर के प्रति, है ना, या राज्य के प्रति, राज्य की सुविधाओं के प्रति, तो इतना आसक्त। जब तक वो विदुर आके उनको कुत्ते कुत्ता हो ऐसे जब तक उन्होंने कहा नहीं, भीम ने फेंका हुआ प्रथम स्कंद में आप देखे, वो बहुत प्रसिद्ध है वो चर्चा, वो शिक्षाएं, विदुर के जो शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध है, महाभारत में भी बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया गया, तो भागवत में बहुत ही कड़क है और महाभारत में विस्तार से है। तो ऐसे शिक्षाएं देते कि घर त्याग छोड़ के चलो, तो ऊंचे वर्गों में हमेशा ये घर त्याग के चलना ही चाहिए। ऊंचे वर्ग के जो परिवार होते थे या वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, तो शुचिनाम कहा गया ना उनको, और श्रीमताम, कुछ एरिस्टोक्रेटिक वैश्य जो होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, तो घर को त्याग करके वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं वो लोग, तो आजीवन ऐसे ही बने नहीं रहते। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक संस्था हमें जानना चाहिए कि, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, कभी कभी भक्त लोग इस्कॉन में हम लोग सुनते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जरूरत नहीं है, भक्ति करना काफ़ी है, और हमारे परिवार में भी सब वैष्णव लोग हैं, हम लोग वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वो सब ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं भागवत में, कुंती महारानी उनके परिवार वाले भी क्या थे, भक्त लोग थे, वैष्णव लोग थे, उन्होंने की भी क्या कहा, मेरे जो संबंध है, स्नेह है इनके प्रति, वो भी खाट लोग थे ऐसे बोलते। हालांकि वो स्त्री होने के कारण वानप्रस्थ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा स्नेह जो है उसको काट दो करके। तो फिर हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज का भक्ति तो वर्णन बहुत अच्छा हुआ है भागवत में, कि सभी कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। सो सबई मन कृष्ण पदार अविंद योर वाचान शिव कुंड गुणान वर्णन करो हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कदोदय। ऐसे वर्णन आता है कि सभी कैसे उन्होंने इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा के वो क्या किए, वो परिपूर्णता प्राप्त किया उन्होंने। उस परिपूर्णता स्थिति में भी वो वानप्रस्थ लेते हैं। वहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी भक्त अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं होता, और ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वानप्रस्थ लेके वन में प्रवेश कर दिया अम्बरीश महाराज। और ऐसा भी होता है आध्यात्मिक संस्था में, भक्ति के आंदोलन में, संस्थापक आचार्य ने बताया होगा आजीवन आप पद पर रहिए करके, लेकिन फिर भी जो संस्थापकाचार्य वो भी ये भी शिक्षा देते हैं कि वैराग्य और विद्या के बारे में भी शिक्षा देते हैं, तो वो भी हमें समझना चाहिए और वो भी हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। और जैसे हम लोग हमारा जो आयु है बढ़ता जाता है तो हम लोग जो पद के साथ जो जिम्मेदारियां आते हैं उसको पूरा करने में हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हमें तब क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में, भक्ति कार्यों में, ऐसे व्यवस्थापना के कार्यों से ज़्यादा हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरों को प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण देके तो दूसरों से ये सब कराना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, हमारा जिम्मेदारी को भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो धृतराष्ट्र के जैसे हमारे भावना बन जाता है, सो मेंटालिटी बन जाता है। तो ये है धृतराष्ट्र। और एक और चीज़ है कि आजकल आधुनिक हम लोग देखते हैं जो पॉलिटिशियंस है ना, राजनीतिज्ञ लोग, तो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी अभी भी देखो 60 के बाद भी, उनको 60 के बाद क्या करना है वो राजनीतिज्ञ में, हाँ 50 60 50 साल, पंच षोडम वनम रजत, 50 साल में क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे कार्यकलापों से निवृत्ति लेकर हमें वन में जाना चाहिए। ये लोग 50 60 70 के बाद भी ये लोग अड़े रहते हैं वहीं पर, हाँ वहीं पर पकड़ के रखते हैं, किसी न किसी तरह गद्दी को प्राप्त करूँ और पकड़ के रखूँ उसको, है ना। ये सब धृतराष्ट्र के बुद्धि। प्रभुपाद जी गांधी, एम के मोहनदास करमचंद गांधी को भी पत्र लिखा होगा, अभी बूढ़े हो गए, बस अभी छोड़ दो नहीं तो आपको बहुत ही बुरा मृत्यु हो जाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिख दिया और ऐसा ही हुआ 3 महीने में। हाँ उसको समझ में, प्रभुपाद जी बताए आप भी भगवद गीता से प्रेम करते हो, हाँ क्यों ना उसको अच्छी तरह से समझेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसका प्रचार करेंगे, आपको भी लाभ होगा और दुनिया को भी लाभ होगा, सिर्फ देश के लिए नहीं दुनिया के लिए भी लाभ होगा, क्योंकि ये गांधी जी जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे, पूरा पाश्चात्य देश में भी उनका प्रभाव था, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ फिर, है ना। तो ऐसे हम लोग शास्त्रों के शास्त्र विधि को पालन नहीं करेंगे तो ऐसे विशेष करके वर्णाश्रम का सभ्यता नहीं है तो क्या हो जाता है, हम लोग अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे और समाज के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, विशेष करके समाज के लिए, क्योंकि सो समाज के लिए एक व्यवस्था है ये। तो फिर धृतराष्ट्र ने तो इसको पकड़ के रख लिया। अभी हम लोग एक कुछ इस तात्पर्य के अंत में एक प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को एक वो फार्मर को क्या बोलते हैं, कृषि कृषि तुलना करते हैं, और युद्ध भूमि को क्या है, एक खेत को तुलना करते हैं। अभी उसको क्या कीजिए आप, उसका एक चार्ट बनाइए, एक टेबल बनाइए, टेबल तो उपमा और किनके द्वारा उसको तुलना की गई है, क्या उपमा है उसको, उपमा को हमें हम लोगों को उदाहरण या उपमा को ऐसे ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तो खेत क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, एक कॉलम में खेत लिखिए और दूसरे कॉलम में कुरुक्षेत्र युद्ध, और ऐसे क्या क्या किससे किससे तुलना कर रहे हैं ऐसे उसको एक टेबल बनाइए, तो फिर उसके बाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, तो 2 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। लिख दे, पढ़िए उसको, समझ में आ जाएगा ना? खेत को किससे तुलना की गई, ठीक है आपको नहीं हो रहा है बाद में हम लोग उसको पॉइंट पर। तो ऐसे धृतराष्ट्र मतलब राष्ट्र को पकड़ने वाले, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं किया। वो यहाँ पर संजय को पूछ रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत आयुयुत्सव। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र करके संबोधित करते हैं। अभी आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और धर्म नहीं है तो क्या है, मनुष्य जीवन पशु जीवन के समान है। तो धर्म का अर्थ है, हमें धर्म क्यों महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में, क्योंकि हमारे जो भौतिक जो प्रवृत्तियां हैं उसको नियमित करते हैं। वो क्या प्रवृत्तियां, वही है आहार निद्रा भय मैथुनम च। सामान्य में तत् पशुवी नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुवी समान। सो वो धर्म को धर्म क्या कर देता है, हमारे आहार निद्रा भय मैथुन को नियमित करता है। तो कैसे करता है, विवाह के द्वारा मैथुन को नियमित करता है ना, विवाह संस्कार के द्वारा। उसके पहले ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे मैथुन नियमित हो जाता है ना? तो इसको ही वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। यह धर्म शब्द उस श्लोक में क्या है, वर्णाश्रम धर्म है वो। तो धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तो ये धर्म को कुछ धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग स्थल भी हुआ करते थे। कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थल है। ये कुरुक्षेत्र शब्द इसके लिए महाराज कुरु जो पांडव और धृतराष्ट्र उनके पूर्वज थे उनसे आता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, देवताओं को प्रसन्न किया था, और देवताओं ने उनको वर प्रदान किया कि आपके नाम से ये कुरुक्षेत्र जाना जाएगा, और यहाँ पर जो भी युद्ध करते हुए मरेगा क्या होगा, वो ऊंचे लोगों को प्राप्ति होगा, ऐसे उनको क्या आशीर्वाद दिया गया। और भी बहुत सारी चीज है ऐसे, ये बहुत ही इसका वर्णन है इतिहास में, तो ऐतिहासिक वर्णन है। कुरुक्षेत्रे देवयाजनम, आप कुछ यज्ञ करना चाहते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या दूसरा अर्थ है देवताओं के लिए भी क्या है, ये पूजनीय स्थान है, या देवताओं के प्रति आप यज्ञ या कुछ धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र में करना चाहिए। ऐसे जाबाल उपनिषद में वर्णन हुआ है, जाबाल उपनिषद में कुरुक्षेत्र देवयाजनम, तो ऐसे वर्णन आता है। प्रभुपाद इसको यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, वो कहते हैं ना तात्पर्य में कि चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। वेदों में मतलब कहाँ, ये जाबाल उपनिषद में ऐसे कहा गया। सो देव कुरुक्षेत्र देवयाजनम, तो ऐसे वर्णन आता है सो उपनिषदों में। तो ये धर्म क्षेत्र है। हम लोग भागवत से भी देखते हैं कि परशुराम सभी क्षत्रिय उनको, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनको हत्या करने के बाद फिर यहाँ पर आए कुरुक्षेत्र में, फिर वहाँ पर वो कुंड बनाकर वहाँ पर स्नान करके तपस्या किया, उन्होंने दान दिया उन्होंने, ताकि उनके जो कर्म है उससे मुक्त होने के लिए। वास्तव में वो भगवान के अवतार है इसलिए उनको कुछ लागू नहीं होता, फिर भी दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए तो वो करते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रह्म कुंड भी है, ब्रह्मा जी आके वहाँ पर तपस्या किए थे। तो ऐसे हम लोग कई ऐतिहासिक हमारे लिए ऐतिहासिक उदाहरण ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व कहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलता है? वो पुराणों से। हमें इतिहास और पुराण जो स्मृति शास्त्र है वही हमारे लिए इतिहास है। हालांकि आधुनिक ऐतिहासिककार वो लोग वो बोलते हैं कि ये क्या है, ये दंत कथा है, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं, कोई आचार्य ने ऐसे कहा नहीं है हम लोग। तो हमारा ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो पुराण और इतिहासों से आता है। तो ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक उसका कुरुक्षेत्र का महत्व है, लेकिन सार में हम लोग देखेंगे तो उसका क्यों क्या धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है कि वहां पर भगवान कृष्ण उपस्थित है। पहले भी भगवान कृष्ण वहां पर गए थे ना, तो 16 एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था उस समय पर, सभी वहां पर द्वारकावासी, ब्रजवासी और हस्तिनापुर से भी पांडव वगैरह आए थे। तो क्योंकि वहाँ पर धार्मिक क्रियाएं किए जाते हैं उस समय पर, तो हम लोग देखते हैं भगवान वहाँ पर अभी उपस्थित है युद्ध भूमि में, वो प्रमुख चीज है। एक धर्म, एक धार्मिक क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र क्या बनाता है? वो भगवान के उपस्थिति। भगवान कहीं पर भी, भगवान और उनके भक्त आए तो वो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र भी बहुत ही धार्मिक क्षेत्र हो जाता है। पहले यहाँ पर आप लोग आए, यहाँ पर तो पहले यहाँ पर क्या था, कोई ऐसे ऑफिस हुआ होगा जो भौतिकवादी कार्यकलापों में लोग लगे हुए होंगे, लेकिन अभी क्या है, एक धार्मिक क्षेत्र। तो जहाँ पर लोग जानते हैं कि यहाँ पर मंदिर है और आते हैं यहाँ पर तो धर्म के बारे में सीखने के लिए, तो वैसे ही तो भगवान के जो उपस्थिति है, क्यों ऐसे होता है, क्यों भगवान, क्योंकि भगवान ही धर्म के पिता है। भगवान कृष्ण के धर्म को धर्म के पिता माना गया वो सभी, इसीलिए वो बोलते हैं ना, मैं धर्म को स्थापना करने के लिए इस जगत में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युतानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दशकतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो सभी वेद शास्त्रों में जो धार्मिक नियम दिए गए वो सब भगवान से आते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। हम लोग धर्म को नहीं बना सकते, अपने आप हम लोग नहीं बना सकते, या कोई स्थान को हम लोग धार्मिक स्थान अपने आप नहीं बना सकते हैं। जो भगवान ने बताया हुआ जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो चलना चाहिए वहाँ पर, या भगवान वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहना चाहिए, तभी वो क्षेत्र धार्मिक हो जाता है मूलतः। तो इसलिए धर्म को नहीं बनाया जाता, वो भगवान स्वयं उसको देते हैं। और कहाँ पर वो देते हैं? वेदे रामाय वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुषुम्ना। तो वेदों में ये धर्म का धार्मिक नियमों को दिया गया। वेद क्या है? वेद को पालन करना ही धर्म है। वेद को पालन नहीं करते हैं तो वो अधर्म है, क्योंकि वेद भगवान साक्षात नारायण है। तो ऐसे जो यमदूत विष्णुदूत को बता रहे थे, क्योंकि विष्णुदूत ने पूछा आपके अनुसार आप सोचते, आप कहते हो कि आप धर्मराज के अनुयायी हैं, तो बताइए धर्म का क्या परिभाषा है? तो ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। तो इसलिए ये धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि भगवान जो धर्म के पिता है स्वयं वहां पर विद्यमान है। तो ये आध्यात्मिक क्या है महत्व इस क्षेत्र का, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, हम लोग समझते हैं ना, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व समझते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक महत्व भी होता है। भगवान कृष्ण के उपस्थिति जो है वो आध्यात्मिक महत्व है, उसके कारण सब कुछ धार्मिक हो जाता है, क्योंकि भगवान ही धर्म के पिता है, इज द फादर ऑफ ऑल। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, एक सेक्टेरियन गॉड, ये हिंदू भगवान है, ऐसे लोग होते हैं पाश्चात्य देश में जाएंगे तो। तो हिंदुओं के ऐसे एक माइथोलॉजिकल दंत कथा के भगवान है ऐसे वो बोलेंगे, माइथोलॉजिकल फिगर हिंदू। लेकिन नहीं, वो सभी धर्म के पिता वही है, सभी धर्मों को पालन करके उनको ही प्राप्त करना है। एक ऐसा ईसाइयों का, मुसलमानों का या बौद्धों का और हिंदुओं का अलग अलग भगवान नहीं होते, एक ही भगवान होते हैं। भगवान मतलब उनके समान कोई नहीं है, उनके परे कोई नहीं है, वही धर्म का स्थापन भी करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसा एक सेक्टेरियन गॉड नहीं है, कोई मत के या पंथ के भगवान नहीं है, तो वो सबका भगवान है, सब लोग उनको ही ढूंढ रहे हैं। ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सतैव बजाम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, मुझे ही सब लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है वो किनको ढूंढ रहे। तो ऐसे भगवान कृष्ण भगवान है। यहाँ पर ये धर्म क्षेत्र जो शब्द को उपयोग करके क्या यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या बता रहे हैं, वो अपने भय और चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। ये लोग धर्म क्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध करने के लिए, क्यों चिंता हो गया उनके लिए, दो कारण है उसके लिए। एक कारण है कि वो ये नहीं चाहते थे कि पांडव और कौरवों के बीच में समझौता हो जाए और युद्ध ना चले। इसका अर्थ है कि उनके जो पुत्र है, जो सभी दुष्ट है, अधार्मिक है, वो लोग ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर वो लोग अच्छे बन जाएंगे, है ना। स्थान का भी प्रभाव होता है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत ही कल्चर शॉक हो गया, क्योंकि हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थे, ऐसे फैन नहीं चलते थे, ऐसे मोबाइल बजाते नहीं थे, शांत स्थान पर थे। तुरंत ही हम लोगों को अलग महसूस हो गया। तो स्थान का भी बहुत महत्व हो, हमारे चेतना के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण होता है किस स्थान पर हम लोग निवास करते हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं मंदिर क्या है, दिव्य है करके, लेकिन फिर भी प्रभाव तो रहता है बहुत ही, क्योंकि हम लोग दिव्य नहीं है। हालांकि मंदिर दिव्य है, लेकिन हम लोग दिव्य नहीं है। तो मंदिर में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हद तक सत्वगुण को बना के रखने के लिए कोशिश करना चाहिए, या दिव्य वातावरण को बना के रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पहले सत्वगुण का वातावरण होता है, फिर बाद में दिव्य वातावरण आता है। सत्वगुण ही नहीं है तो दिव्य कहाँ से आएगा, हा? ठीक है। तो स्थान का भी प्रभाव होता है, वो जानते हैं ना। वो एक पुराण में ऐसे कथा आता है, वो श्रवण कुमार जो दशरथ महाराज ने उनके माता पिता को मार दिया था, पिताजी को, तो श्रवण कुमार वो एक स्थान पर जा रहे थे। वैसे वो माता पितृ उनके माता पिता के प्रति उनको बहुत ही क्या था, नहीं नहीं वो मतलब जिम्मेदारी को लिया था उन्होंने, बहुत ही धार्मिक थे वो, तो उनको देखभाल करना वो भी वैदिक सभ्यता का एक अंग है, माता पिता को देखभाल करना भी। तो वो देखभाल कर रहे थे, लेकिन एक स्थान पर जाते हैं वो, वहाँ पर सोचना शुरू कर देते, क्यों ये बूढ़े लोगों को मैं इतना तकलीफ लेके ये सब इनका सेवा कर रहा हूँ। आप जानते हैं ना वो ऐसे कहाँ कैसे लेके जा रहे थे, आगे ये कैसा ये रहता है बास्केट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कामर, या वो उसमें डर रख के वो लेके जा रहे थे वो, एक 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 इसमें पिताजी और दूसरे में माताजी, एक स्थान पर जाके उनको बाद में उस स्थान से जाने के बाद उनको फिर से मैं ऐसे कैसे सोच रहा हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा, क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारे दुष्ट असुर लोग रहा करते थे, इसके कारण उस स्थान का प्रभाव हो गया उनको, क्योंकि स्थान का भी चेतना के ऊपर प्रभाव रहता है। तो धृतराष्ट्र भी ऐसे ही सोच रहे, मेरे हालांकि वो लोग समझौता करने का इच्छा नहीं है इनको, फिर भी ये लोग इसके प्रभाव में आ सकते हैं, और दूसरा चीज है उनके भय और चिंता का कारण था, मतलब इससे क्या वो एक और चीज यहाँ पर कि धृतराष्ट्र युद्ध चाहते थे, युद्ध चाहते थे, युद्ध होना ही चाहिए और पांडव इसमें मिल जाना चाहिए, वो उनके इच्छा था। तो और दूसरा उनका भय का कारण था इसलिए कि क्योंकि वो युद्ध चाहते थे और पांडव मिट जाना चाहिए, यह धर्म क्षेत्र होने के कारण क्योंकि पांडव धार्मिक है तो उनको ये सहायता करेगा, ऐसे ये युद्ध के जो नतीजा है उसके ऊपर ये धर्म क्षेत्र प्रभावित करेगा। तो ये दो कारणों के लिए वो भयभीत और चिंतित है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र शब्द को उपयोग किया उन्होंने। सीधा वो कुरुक्षेत्र में बोल सकते थे, कुरुक्षेत्र में वो संवेद होकर वो इकट्ठा होकर ये लोगों ने क्या किया ऐसे पूछ सकते थे, क्यों ये धर्म क्षेत्र को उन्होंने वो शब्द को यूज किया, ये महत्व है उसका। तो इससे प्रभुपाद ये उदाहरण हम लोग ये उपमा को देख रहे थे कि प्रभुपाद कहते हैं ना कि पांडव तथा धृतराष्ट्र या उसने जानबूझकर अपने या नहीं वहां पर इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति नहीं, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उकड़ा दिया जाता है उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो आप लिख लीजिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है, ये खेती है, या खेती क्या है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे पहले खेती लिखिए क्योंकि उदाहरण दिया जा रहा है आप। और कृषि कौन है, धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि वो ये यहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि उनका इच्छा से हो रहा था, उनका मिशन था कि ये सभी अधार्मिक लोगों को इकट्ठा करके उनको खत्म करना था, है ना। तो वो धर्म के पिता थे, वो कृषिक थे, कृषिक धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण। और जो दान के दान कौन है, दान के जो पौधे हैं वो कौन है, सो धार्मिक राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज जैसे धार्मिक राजा ऐसे लगे। तो अवांछित पौधे कौन थे, सो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र वो अवांछित पौधे थे, अभी उनको निकाला जाता है, इसका अर्थ क्या है, उनको निकाला जाना का अर्थ क्या है, उन पौधों को उखाड़ के फेंकने का अर्थ क्या है, युद्ध में उनको नाश करने का, लिखिए उसको भी लिखिए। लिख दिए हो गया, और कुछ है इसमें इस उदाहरण में, तो हम बाद में आज ये यही पर दिए, यही पर हम लोगों ने किया, आगे जाकर ये सब होमवर्क दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा, गृह कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे टेबल बनाना, चार्ट बनाना, इसको समझना अच्छी तरह से, है ना। तो इससे एक और चीज हम लोग समझ सकते हैं कि उसको या कि यहाँ पर प्रभुपाद आरंभ से ही ये धर्म क्षेत्र शब्द को लेकर ये आरंभ से ही ये स्थापित कर रहे कि भगवान कृष्ण क्या है, वो परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम है, भगवान है। क्योंकि परम देवोत्तम या पुरुष या परम सत्य का एक परिभाषा है। क्यों भगवान कृष्ण या परम सत्य या परम देवोत्तम पुरुष है, क्यों है? वो धर्म के पिता है, इसके कारण ही वो परम। अलग अलग कारण है क्यों भगवान कृष्ण, वो वेदों से उनको ही जानना है, वेदों का लक्ष्य है वो, ये एक कारण है कि क्यों भगवान परम सत्य है। और सभी ज्ञान के ऊपर वही अधिकारी है, उनसे सब कुछ, वेद भी निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं। हाँ, इसके लिए वो परम सत्य है। वो भगवान के जो परिभाषा है, अलग अलग प्रकार के जो विश्लेषण है भगवान शब्द का या परम सत्य के जो शब्द का, उसको पूरी तरह से वो क्या करते हैं कि कन्फर्म्स इन फुल डिटेल। तो वो समझ में आ रहा है। और वो सभी धर्मों से के द्वारा ऐसे है, और सभी वो अवतारों के स्रोत है, और सभी देवी देवताओं के परे है वो। ये सब कारण है क्यों भगवान कृष्ण परम देवतम पुरुष है। और यहाँ पर एक कारण प्रॉपर बोल रहे हैं कि वो धर्म के पिता है, इसलिए वो भगवान परम देवतम पुरुष है या परम सत्य है करके। इसका अर्थ है, आरंभ से ही श्रील प्रभुपाद अपने टीका में ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है करके। लेकिन जो तथाकथित व्याख्यानकार वो क्या करते हैं, वो भगवान को अलग रख देते हैं, भगवान उनको जरूरत नहीं है, उनको मार देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो भी पालन कर, भगवद गीता को पालन करने का जरूरत नहीं है, और उनसे जो सुनते हैं उनका से जो उनका जो ग्रंथ व्याख्यान पढ़ते हैं उनको भी पालन करने का जरूरत नहीं है ना, यही नतीजा होता है। लेकिन प्रभुपाद पहले से ही ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान धर्म के पिता है, वही परम सत्य है। तो इसलिए हमें इस भगवद गीता को अपन हमारे जीवन में पालन करने का जरूरत है। तो ऐसे हमें समझा रहे, समझ में आ गए पॉइंट। तो ये भी धर्म क्षेत्र का महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पांडवों के लिए क्या है, ये एक लक्षण है। यहाँ आरंभ से ही पता चल रहा है कि पांडव इस युद्ध में जीत हासिल करने वाले, ऐसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने ये धर्म क्षेत्र शब्द को उपयोग किया उन्होंने, और उपयोग करके अपने डर और चिंता को व्यक्त किया उन्होंने। तो ये एक क्या है, लक्षण है कि पांडवों को इस युद्ध में जीत हासिल होगा। तो पहले श्लोक से 19वां श्लोक तक बहुत सारे ऐसे कारण आएंगे क्यों पांडवों के लिए, ऐसे कई सारे लक्षण या कारण आएंगे इस युद्ध में पांडवों के लिए जीत हासिल होगा। तो आप वो एक प्रश्न लिख लीजिए, कौन कौन से वो कारण है, कौन कौन से ऐसे लक्षण है पहले श्लोक से 19वां श्लोक तक, वो एक होमवर्क बना लीजिए आप। तो उसको पढ़ के, पहले श्लोक से 19वां श्लोक तक उसको पढ़ के आपको इसका याद ही बनाना है, लिस्ट बनाना है। अभी हमने पहले बता दिया है ना, पहला पहला कारण क्या है पांडवों के लिए जीत हासिल होगा इस युद्ध में, धृतराष्ट्र ये धर्म क्षेत्र शब्द को उल्लेख करके या उसको लेकर उन्होंने अपने चिंता और भय को व्यक्त किया, वो है। और इसमें दूसरा कारण है कि भगवान कृष्ण जो धर्म के पिता है स्वयं पांडवों के पास है या कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, इसलिए धर्म का ही जीत होगा यहाँ पर, और पांडव ही धार्मिक है इसलिए उनका जीत होगा, वो दूसरा कारण है। समझ में आ गए? तो इसमें दो कारण हम लोगों को मिलते हैं। तो आगे और भी कई सारे कारण हैं, उनको सभी को आपको लिस्ट करना है। तो ऐसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षते समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव, वो इकट्ठा हुए हैं किसके लिए, युद्ध करने की इच्छा से। तो हालांकि भगवान कृष्ण और पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन ये क्या है, कौन है, दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन के कारण वो युद्ध पर अड़े हुआ था, अड़ा हुआ था, अटके हुआ था, उसके कारण युद्ध, आप जानते हैं ना, अभी पहले अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करने के लिए, भगवान का भक्त ये सब करने के लिए इच्छा नहीं रहता है, लेकिन भगवान चाहते हैं तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जनरली उनको ऐसा नहीं इच्छा होता है। तो लेकिन ये दुष्ट दुर्योधन युद्ध चाहता था, वो राज्य चाहता था, उसके कारण यहाँ पर युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हो गए। मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठा होकर, यहाँ पर मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडव, वास्तव में दोनों उनके ही थे ना, उनके ही थे ना, वो ब्लड रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेटिव्स, हिंदी में ब्लड रिलेटिव, हाँ, एनीवे, हालांकि वो लोग अपने परिवार वाले थे, अपने संबंधिक थे, वो बात छोड़िए, एक राजा को सभी को पिता माना जाता है, सभी प्रजा का पिता माना जाता है, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, जो भी जन्म लेते हैं उनका पिता माना जाता है, राजपत्नी को माता माना जाता है, तो सबको पिता, जैसे आप जैसे पहले स्कंद में देखते हैं ना, सुत गोस्वामी को शौनकादि ऋषिगण पूछे हो, परीक्षित महाराज सभी जीवों को पिता के समान थे, क्यों उनको सभी को त्याग करके वो चले गए हो, ऐसे प्रश्न था उनका। तो इसीलिए राजा को पिता माना जाता है, तो वैसे सभी प्रजा के पिता होना चाहिए धृतराष्ट्र को, और उनके सब परिवार वालों को, सगे संबंधियों को कैसे वो अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं मामका पांडवश्चैव, उसके मन में क्या चल रहा है, उनको वो अलग कर रहा है, और ये ही मेरे हैं, ये मेरे हैं बस, ऐसे कह रहा है। और यही पॉलिटिक, मैं बता रहा था ना, डिप्लोमेसी, प्रॉपर बोलते हैं, भौतिक जगत मतलब डिप्लोमेसी, राजनीति करना। तो राजनीति का मूल आधार क्या है पता है, मामका पांडा, ऐसे भेद करना ही राजनीति का मूल आधार है, ये मेरे हैं, ये उनका है, माँ परा, हमारा कौन सा है और उनका क्या है, वो कौन है और हम कौन है, ऐसे भेद करने में, भेद करना ही क्या है, सो राजनीति क्या, राजनीति का आधार है, आजकल वही चलता है ना, मेरा पार्टी उनका पार्टी है ना, तो बीजेपी और कांग्रेस झगड़ते रहते हैं, तो यही पॉलिटिक्स का आधार है ये डिप्लोमेसी। और मामका शब्द, वो भी अपने पुत्रों के प्रति जो ममता है, स्नेह है, उसको इंगित करता है, मामका, उसको बहुत ही स्नेह था उसको, हम लोग उसके बारे में चर्चा किया, तो प्रभुपाद इसलिए बता रहे, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से हमें उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को पांडव के पुत्र कुरु तथा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है, तो समझ आ सकता है कि क्या उनका मनस्थिति था, है ना। तो फिर उसके बाद में पांडव के, हम लोगों को क्या है, डिप्लोमेसी, ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लगना है हमको, या डिप्लोमेसी राजनीति में ये फरा सब है ना, हमारा दूसरा ऐसे करने से। तो किम अकुर्वत संजय, वो क्या किया उन्होंने, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्या करेंगे युद्ध भूमि में आकर, युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में आकर युद्ध करेंगे, क्यों ये प्रश्न पूछना चाहिए, और ऐसे युद्ध भूमि में ऐसा समझौता नहीं होता है, वो सब जी समझौता करना, वो करना सब पहले हो जाता है, वो सब फेल हो गए ना, समझौता करने के लिए भगवान स्वयं वो शांति दूत बन के गए वो, इसलिए उनका नाम भी पांडव दूत प्रसिद्ध हो गए, पांडव दूत बनकर प्रसिद्ध हो गए। वो कांचीपुरम में ये है, वो ऊंचा भगवान का एक बहुत ही बड़ा विग्रह है पांडव दूत करके, तो वो दूत बनकर गए वो, लेकिन वो सब फेल हो गए। फेल होने के बाद यहाँ पर युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हो गया, लेकिन युद्ध ही करेंगे वो। तो युद्ध करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग उस दिन उदाहरण दे रहे थे, आपको बहुत भूख लगा है, बहुत बड़ा फीस्ट का थाली आपके सामने आ जाता है, तो क्या करेंगे आप, खाएंगे? आपको खाने के लिए बोला गया है और खाएंगे आप, क्यों नहीं खाएंगे? वैसे ही ये लोग युद्ध ही करेंगे, फिर क्यों धृतराष्ट्र इसको ये प्रश्न को पूछ रहे हैं, क्यों ये धृतराष्ट्र प्रश्न? तो वही उनके लिए भय था कि क्या ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के प्रभाव में आकर प्रभावित हो गए और समझौता कर किया उन्होंने, या भयभीत हो गए, ये शंका है। और दूसरा है भय कि कैसे ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पांडवों के लिए सहायता करेगा। तो अभी हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे तात्पर्य, क्योंकि तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए, हालांकि हमने सभी कवर कर दिया तात्पर्य में जो भी है, फिर भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना? कौन पढ़ेंगे? यू शुड हैव वन मोर माइक। व्हाट व्हाट हैपेंड टू वन मोर माइक? बहुत खर्चा है। तो हु विल रीड? पढ़िए जोर से। हाँ, तात्पर्य।
भगवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है।
वर्णन कर चुके हैं हम लोग, पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में।
इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संभीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ पूर्वक व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे।
कैसे भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए वो हम लोग इसको चर्चा किए थे, ये भी उल्लेख किया था ना हम लोगों ने। तो एक भक्त के मार्गदर्शन में, परंपरा में आते हुए भक्त के मार्गदर्शन में समझना चाहिए और बिना स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना हमें उसको समझना चाहिए। दो चीज बताते हैं उसके।
अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्वों के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे कर देता है।
उदाहरण भगवत गीता में अर्जुन के पद चिन्हों में चलते हुए उसको समझना चाहिए, वो भी एक है, ठीक है? और उसका क्या फल होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग भगवद गीता लाइक दैट? प्रभुपाद बोलते हैं कि समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। हम लोगों ने चर्चा किया ना जो छह वैदिक दर्शन होते हैं, पता है किसी को, याद है छह वैदिक दर्शन? षट दर्शन बोलते हैं ना उनको, वो वेद शास्त्र का ज्ञान माना जाता है उसको। हाँ, उसके परे पीछे उसको पीछे छोड़ देता है। हमने कहा उस दिन कि ये लोग वेद छठ दर्शन के जो सभी दार्शनिक लोग हैं बहुत ही प्रकांड पंडित होते हैं वो लोग, लेकिन भगवद गीता उनको आसानी से आगे पीछे छोड़ देता है। और पढ़िए।
पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अभी तो ऐसे बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है।
तो पीछे छोड़ देगा। दूसरा चीज क्या है, ये मानदंड है कि सभी सारे अन्य शास्त्रों में जो है वो सब मिलेंगे।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।
तो ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। क्या है भगवद गीता? पूर्ण आस्तिक, परिपूर्ण है, उसमें कोई त्रुटियां हैं क्योंकि स्वयं भगवान ने इसको बताया।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इस प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।
तो ये सब भगवद गीता क्या है वर्णन कर रहे हैं कि वो दो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में वार्तालाप, या भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच में वार्तालाप। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण स्वयं ने उसको जब यहाँ पर विद्यमान थे, उपस्थित थे, उन्होंने उस समय पर मानव जाति के कल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए किया है।
धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की।
तो पहले चीज हमने बताया कि सार क्या है, धर्म क्षेत्र का सार क्या है, वो भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित है। उसका धार्मिकता, ऐतिहासिकता और आध्यात्मिक महत्व का क्या सार है कि भगवान स्वयं वहाँ पर विद्यमान है।
कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी, वो नहीं चाहता था कि।
तो क्यों, क्या जरूरत था वो प्रश्न पूछने का? ऐसे
वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है।
जावाल उपनिषद, कुरुक्षेत्र देवयाने।
अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर।
धृतराष्ट्र सिर्फ भयभीत ही नहीं था, अत्यंत भयभीत था, लेकिन हालांकि वो अपने आप को संजय को समझ में आ गया।
उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वो सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर।
तो महाभारत में कैसे वर्णन आता है कि 10 दिन के बाद जब भीष्मदेव गिर गए, तब संजय वापिस आता है उसको सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए धृतराष्ट्र को। तब वो धृतराष्ट्र पूछता है कि किम अकुर्वत संजय, लेकिन यहाँ पर ऐसे बताया गया है, बाद में जाकर 18वें अध्याय में स्वयं संजय बताएंगे। व्यास प्रसाद, मैंने व्यास के प्रसाद, भगवान व्यास देव के कृपा के कारण मैं सब कुछ देख सका या सुन सका क्या हो रहा है युद्ध भूमि में करके। इसलिए वो दोनों ठीक है, महाभारत में भी ठीक है लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है,
इसलिए
जैसे विरोधाभास है तो शास्त्रों में क्या करना चाहिए, उनको दोनों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे है ना, हम लोग गाय के गोबर क्या है, मैंने एक मल है वो, फिर भी उसको छूने से हम लोग क्या होते हैं, अशुद्ध नहीं होते। कोई मल हम लोग छूएंगे तो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए तुरंत स्नान करना पड़ता है। तो दोनों को हम लोग स्वीकार करते हैं, है ना, क्योंकि ये सभी चीज़ अलग अलग स्तरों पर वर्णन किया जाते हैं, इसलिए विरोधाभास लगते हैं, दोनों सत्य है।
इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तर अधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है।
हम लोगों ने चर्चा किया ना, वो कैसे भेद कर रहा है और पॉलिटिक्स कर रहा है धृतराष्ट्र।
जिस प्रकार धान के खेतों खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित बौद्धों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।
तो ऐतिहासिक या धार्मिक महत्ता से महत्व भी हम प्रपद देते हैं और विशेष करके आध्यात्मिक महत्व देते हैं। भगवान की उपस्थिति का क्या महत्व है उसमें? तो भगवान के उपस्थिति का महत्व है कि तो वही वो युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र बनाते हैं, और दूसरा चीज है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में जीत नहीं हासिल होगा। तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, ऐसा मत समझे कि एक ही श्लोक हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने सभी अध्यायों का शीर्षक के बारे में चर्चा किया, इस अध्याय के जो सार है, समरी है, उसको चर्चा किया, और इसमें अलग अलग विभाग है उसको चर्चा किया। तो शाम को इसको आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न भी शाम को ही लेंगे, अभी लेट हो गया है। ठीक है, आपका जो भी प्रश्न है उसको नोट करके रख लीजिए, हम लोग उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।